ईशान अपना फैसला सुना चुका था। उसने सिर्फ फैसला ही नहीं सुनाया था, बल्कि कशिश को आगाह भी किया था और आगे के परिणाम के बारे में बताते हुए फैसला उस पर छोड़ दिया था। कशिश ने बड़े ही ध्यान से उसकी पूरी बात सुनी। उसने ईशान के शब्दों में झलकते दर्द, बेबसी, पीड़ा, दुख, अफसोस जैसे भावों को महसूस किया। आज ईशान की बात सुनने के बाद कशिश को एहसास हुआ कि ये नाराज़गी उसकी खुद की तकलीफ या दर्द की वजह से नहीं है, बल्कि ये सब धीरज जी के साथ हुए दुख, पीड़ा, जिल्लत और बेरुखी भरे व्यवहार के कारण है। ईशान गलत नहीं था और कशिश उसकी तकलीफ समझ रही थी। बीती कड़वी बातों को याद करते हुए एक तरफ ईशान की आंखों में नमी तैर गई थी, वहीं उसके दर्द को खुद में महसूस करते हुए कशिश की आंखें भी भर आई थीं। आई एम सॉरी, जाने अनजाने मैंने आपकी तकलीफ बढ़ा दी, पर मैं बस सब ठीक करना चाहती थी ताकि दीदी निश्चिंत होकर जीजा जी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। पर अब मैं आप पर कोई दबाव नहीं डालूंगी और ना ही अपनी नादानी भरी बेवकूफियों और इन उल्टी सीधी हरकतों से आपकी तकलीफ बढ़ाऊंगी। अगर आप सबको खुद से माफ़ करें तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। मैं अब आप पर कोई दबाव नहीं डालूंगी, कभी नहीं डालूंगी, महादेव की सौगंध। और अगर मैं अपनी बात से मुकर गई तो मेरे महादेव मुझसे रुष्ट हो जाएं। कशिश मासूम सी शक्ल बनाकर भीगी पलकों को उठाए मुंह बिचकाए हुए उसे देखने लगी। ईशान उसकी बात सुनकर हौले से मुस्कुरा दिया, फिर अपनी उंगलियों से उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही थी, बिल्कुल बच्ची हो तुम, जरा जरा सी बात पर रोने बैठ जाती हो, छोटी सी बात पर बच्चों जैसे मुंह फुला लेती हो, बच्चों जैसी जिद पकड़कर बैठ जाती हो, बात बेबात पर गुस्से से अपनी छोटी सी नाक फुला लेती हो, अजीब अजीब सी हरकतें करती हो, बेसर पैर की बातें करती हो, ऐसी बचकानी धमकियां देती हो, नादानी करती हो, पर दिल की बहुत अच्छी हो। चलो रोना बंद करो और नीचे जाओ सबके पास, मैं ठीक हूँ। नीचे नहीं आऊंगा तो आज सबके खाने के बाद मेरा खाना ऊपर ही ले आना। कशिश ने सहमति में सिर हिला दिया। उसके नीचे जाने पर ईशान के ठीक होने की बात सुनकर सभी कुछ निश्चिंत हुए। वहीं उसके कमरे में रहने की बात सुनकर उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अमरेंद्र जी ने जया जी को देखा, जिनकी आंखें नम थीं। शायद अपनी गलतियों का एहसास हो गया था उन्हें और मन पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। अमरेंद्र जी ने उन्हें कुछ कहा और दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। ईशान चाय पीते हुए कमरे में चला आया। उसने चाय खत्म की और जैसे ही वापस बालकनी की तरफ कदम बढ़ाए, दरवाजे पर दस्तक हुई। ईशान के आगे बढ़ते कदम रुक गए। उसने पलट कर देखा तो दरवाजे पर अमरेंद्र जी खड़े थे। साले साहब, अगर इजाजत हो तो अंदर आ जाएं। अमरेंद्र जी की बात सुनकर ईशान ने तुरंत ही कहा, आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत है जीजा जी, आ जाइए अंदर। उसके कहने पर भी अमरेंद्र जी अंदर नहीं आए, वहीं खड़े रहे और मुस्कुराकर बोले, इजाजत की जरूरत है साले साहब, क्योंकि आज हम अकेले नहीं आए हैं। उनकी ये बात सुनकर ईशान के चेहरे पर सवालिया भाव उभर आए। इसे देखते हुए उन्होंने आगे कहना शुरू किया, आज हमारे साथ हमारी अर्धांगिनी भी आई हैं, वो कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हैं आपको, अगर आपकी इजाजत हो तो अंदर आ जाएं हम। जया जी का जिक्र आते ही ईशान के चेहरे के भाव कुछ बदल गए, जिसे अमरेंद्र जी ने भी नोटिस किया। जया जी अमरेंद्र जी के पास आकर खड़ी हो गईं। उन्हें देखते ही ईशान के चेहरे पर गहरी उदासी और नाराजगी के भाव उभर आए, पर इनकार करने की जगह उसने सहमति में सिर हिला दिया। उसकी इजाजत मिलते ही अमरेंद्र जी जया जी के साथ ईशान के पास चले आए। क्या कहना चाहती हैं आप, और अब कहने सुनने को रह क्या गया है जिसके लिए आपको यहाँ तक आना पड़ा। ईशान का बेरुखी भरा लहजा देखकर जया जी का मुंह उतर गया। ईशान ने बातों बातों में ही उन्हें जता दिया था कि वो पहले ही बहुत कुछ कह चुकी है और उन सबके बाद अब आगे कुछ भी कहने या सुनने की कोई जरूरत ही नहीं रह गई है। जया दीदी का उदास चेहरा देखकर अमरेंद्र जी ने उनके हाथों पर अपना हाथ रख दिया। इसके साथ ही जया जी की निगाहें उनकी तरफ घूम गईं। अमरेंद्र जी ने अपनी पलकें झपकाईं और उन्हें शांत का इशारा कर दिया। फिर ईशान की तरफ निगाहें लगाते हुए मुस्कुराकर बोले, तुम मामा बनने वाले हो ईशु। ईशान चौंक गया। असल में जया दीदी कंसीव नहीं कर पा रही थीं, जिसकी वजह से यहाँ और उनके ससुराल में सभी काफ़ी परेशान थे। शादी के कई सालों बाद जाकर प्रेग्नेंट हुई थीं और ये खबर उसे बताने आई थीं। यही ईशान की हैरानी की वजह थी। अमरेंद्र जी ने ईशान के चेहरे के भाव देखे तो जया जी के कंधों को थामते हुए मुस्कुराकर उन्होंने आगे कहना शुरू किया, आपकी दीदी की प्रेगनेंसी को 2 महीने से ऊपर हो गए, पर अब तक उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया है। जब हमें इस बारे में पता चला था तभी उन्होंने कहा था कि सबसे पहले आपको ये खुशखबरी देंगी। देना तो काका को चाहती थी, पर वो इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए उनके स्थान पर सबसे पहले आपको बताना चाहती थी। ईशान अब और ज्यादा आश्चर्यचकित रह गया। जया जी ने नम आंखों से उसे देखते हुए हिम्मत करके कहना शुरू किया, मैं बहुत गलत थी ईशु, बहुत गलत व्यवहार किया मैंने चाचा जी और आप दोनों के साथ।
जिसका एहसास मुझे बहुत देर से हुआ। आज मेरी जिंदगी में जो भी खुशी है सब चाचा जी की वजह से है, पर मैंने उनके साथ सबसे बुरा व्यवहार किया। उन्होंने हमेशा मेरा भला चाहा और मैं बेवजह ही उन्हें कोसती रही। उन्होंने मुझे इतनी खुशियां दी और मैं हमेशा अपने व्यवहार और बातों से उनके मन को ठेस पहुंचाती रही, उनकी भावनाओं को आहत करती रही। मेरी उन गलतियों की कोई माफी नहीं है और अब तो वो यहाँ हमारे साथ है भी नहीं। अगर वो होते तो सबसे पहले मैं उन्हें खुशखबरी देकर उनसे अपनी हर गलती की माफी मांगती, पर अब ये संभव नहीं। उनके बाद मेरे बर्ताव और बातों से सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें हुई होगी, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। माफ कर दो मुझे। ईशान, जो हैरान परेशान सा उन्हें देखे जा रहा था, उसके चेहरे के भाव कुछ बदल गए। बीती सब बातें हवा के झोंके जैसे उसकी आंखों के सामने छा गईं। वो बातें जो वो कभी भुला ही नहीं पाया था उसके जहन में घूमने लगी थीं। ईशान कुछ पल खामोश रहा, फिर बिना किसी भाव के बोला, जिनका दिल आपने दुखाया वो सबकी नाराजगी सहते सहते थक हार कर इस दुनिया से चले गए। अगर आपको किसी से माफी मांगनी चाहिए तो वो पापा हैं, पर अफसोस कि अब ना तो वो आप सबकी नाराजगी सहने के लिए यहाँ है और ना ही अब उनसे माफी मांगना संभव है, और मेरे पास आपको देने के लिए बधाई के सिवा और कुछ भी नहीं है। इसके बाद उसने पल भर ठहरने के बाद हल्की मुस्कान लबों पर सजाते हुए आगे कहा, माता पिता बनने वाले हैं, इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। अब आप यहाँ से जा सकते हैं, मुझे कुछ देर अकेले रहना है। ईशान अपनी बात कहकर बालकनी में चला गया। उसने किसी को कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया। अपनी नाराजगी जताकर, अपना फैसला सुनाकर वो वहां से जा चुका था और वहां खड़े दोनों लोग बस उसे देखते ही रह गए। जया जी की नजरें बालकनी के दरवाजे पर टिकी थीं, जो बंद था। अमरेंद्र जी ने गहरी सांस छोड़ी और जया जी की आंखों में आई नमी उनके गालों पर लुढ़क गई। अमरेंद्र जी उन्हें लेकर वहां से चले गए। बालकनी में खड़ा ईशान सुनी निगाहों से घाट को देख रहा था और उसके चेहरे पर गहरी उदासी और पीड़ा के भाव मौजूद थे।